पूजा का अलग अलग दसों अंगों का जयमाला का अर्थ कर रहे थे। पीड़े दुष्ट अनि बांध मार बहुविध करें, उत्तम क्षमा गहो रे भाई, इह भव जस पर भव सुखदायी। गाली सुनी मन खेद ना आनो, उनको अवन कहे आनो, कही है आनो वस्तु छीने बांध मार बहु विधि करें, घर ते निकारे तन विदारे बैर जो न तहाधरे, किए कोटे सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाय प्राणी साम्य जल ले सियरा, मान महाविश्रू करही नीच गति जगत में, कोमल सुधावनु सुख पावे प्राणी सदा, उत्तम मार्ग गुण मन माना, मान करन को कौन ठिकाना, बस्यो निगोध बस्यो निगोध माही ते आया,
बस्यो निगोध माही ते आया,
दमरी रूकन भाग विकाया, रूकन विकाया वसते देव एक इंद्री भर। कीड़ों में गया। जीतव्य जो वन धन गुमान कहा करे जल बुद्ध बुदा। करी विनय बहु गुण बड़े जन की ज्ञान का पावे उदा। अब इसका अपन को आज अर्थ समझना था। कुछ थोड़े से शब्द जो है वो कठिन है, बाकी तो अर्थ आसान है। मान महाविश्वरूप, मान के लिए यहां पर महाविश्व कहा हुआ है। विश्व दो चीजें करता है, विश्व जो है मरण में भी कारण बनता है और विश्व जो है हमें गाफिल भी कर देता है। तो कह रहे हैं कि मान विश्व के समान है, हम अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं। अहंकार वश जो है, जब हमारे मन में अहंकार आ जाता है तो हम अपने सामने दूसरे को कुछ नहीं मानते और अपनी शुद्ध बुद्ध भूल करके दूसरे का तिरस्कार करने लगते हैं। तो कह रहे ऐसा मान तो विश्वरूप है, कर ही नीच गति जगत है। लगता ये है कि मैं अहंकार करके और ज्यादा बड़ा हो गया दूसरे से, सो वर्तमान में भले ही हम अहंकार करके दूसरे का तिरस्कार करके अपने को बड़ा मान लेवे, सो इससे क्या होगा। मेरे अपने उस मान कषाय रूपी भाव से तो और मुझे खोटी गति ही मिलने वाली। बहुत अधिक अभिमान करने वाले को खोटी गति मिलती, क्योंकि जो जितना मैंने एक बार सोचा कि ये जो सूकर है, सूकर है जो घूमते रहते, देखो और दूसरे जीव जितने भी हैं उसमें शेर भी क्यों ना हो, जिससे अपन डरते हैं, उसका भी छोटा सा बच्चा होगा तो खिलाने का मन होगा है। कोई भी खूंखार प्राणी भी होगा उसका बच्चे को छूने का, खिलाने का, लेकिन सूकर के छोटे से बच्चे को भी छूने का मन नहीं होगा, ना वो कभी प्यारा लगेगा। बड़े में तो लगेगा ही नहीं, छोटे में भी नहीं लगेगा। ये दोनों चीजें क्यों आई, मेरे मन में बहुत विचार आता था। फिर भाव फल त्रयी एक किताब है, वो यहां पर मैंने नहीं देखने में आई, वो तो अपने स्वाध्याय में रख लेना चाहिए उस किताब को। उसमें ये लिखा है कि कौन सी पर्याय कौन से काम करने से मिलती है, बारीक बारीक चर्चा है। उसमें जब हमने पढ़ा कि ये सूकर कौन बनता है, कहता उसमें लिखा कि जो निरंतर अभिमान वश दूसरे का तिरस्कार करता है, विशेष रूप से त्यागी व्रती और मुनि जनों का तिरस्कार करता है, अपने धन पैसे की वजह से उनको कुछ नहीं मानता, इसलिए इसको ऐसी पर्याय प्राप्त होती कि हर आदमी तिरस्कार करता, कोई निकट नहीं लाना, दूर रहो, हटाओ इसको, माने पास आ जावे तो घृणा मालूम पड़ने इतना, क्योंकि आपने पहले अपने से बड़े जनों से अहंकारवश घृणा की थी, उस घृणा का परिणाम ये हुआ कि अब आपसे सब घृणा, इतनी घृणित पर्याय प्राप्त। तो ये इसी वजह से इसमें लिखा कि मान जो है नीच गति में कारण बनता है। नीच गति अर्थात तिरस्कार होने वाली गति, तिरंच गति को जो है ठीक नहीं माना। कल भी ये चर्चा आई थी जिसमें हमेशा तिरस्कार भोगना पड़ता है, बद बंधन इत्यादि तो दुख मिलते ही हैं पर तिरस्कार सबसे बड़ा दुख वहां पर, ये नीच गति का कारण बनता। कोमल सुधा अनु, और कोमलता या कि मृदुता वो कैसी है, एक तरफ कह रहे हैं कि मान कैसा है, फिर कहते कि कोमलता या विनय भाव या कि मृदुता का भाव कैसा है, तो कहते वो तो अनुपम अमृत के समान है। सुख पावे प्राणी सदा, जो हमेशा विनयवान है, जिसका स्वभाव कोमल है वो हमेशा सुखी रहता है। अहंकारी व्यक्ति अहंकार करके खुद ही दुखी मान लेता वो अपने आप को कि हाँ हम चार लोगों में ज्यादा बड़े हो गए दूसरे का तिरस्कार करके, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कोई सुख प्राप्त उसको नहीं होता। सुखी तो वो है जो सबके प्रति विनय भाव कोमलता का भाव रखता है, उसका कोई शत्रु नहीं है। और जो अहंकारी है उसके तो कदम कदम पर सैकड़ों शत्रु हैं, हमेशा इस बात का भय बना रहता है कि कोई कभी भी और मेरा तिरस्कार कर देगा। जो जितनी ज्यादा दूसरे की उपेक्षा करेगा उसकी भी उतनी ही उपेक्षा होगी, भले ही सामने ना हो। और जो जितना दूसरे को का ध्यान रखेगा उसका भी लोग उतना ही ध्यान रखेंगे। इतना मोटा सा हिसाब अपन समझे तो कह रहे हैं कि मृदुता या विनय या कोमलता वो हमें सुख देती है, वो आंतरिक सुख है। और अहंकार में थोड़ा सा बाह्य में और कुछ सुख मिल जावे, लेकिन भीतर में तो अत्यंत दुख मिलता और गति भी हमारी बिगड़ जाती है। अब फिर कह रहे हैं कि उत्तम मार्दव गुण मन माना, जो है उत्तम मार्दव तो एक गुण है जो सबके मन को अच्छा लगता है। कोई व्यक्ति ज्यादा मान सम्मान चाहे अपना तो अपन को कैसा लगता है, अरे भैया इनको हमेशा मान सम्मान का जो काम आम है नहीं है, मान सम्मान हमेशा माला पैर विचार, अपन अच्छा मानते क्या नहीं। और अगर कोई सम्मान बिल्कुल नहीं चाहता तो अपना मन होता कि इसको सम्मान करें अपन है, उसका और अधिक अपने को वो व्यक्ति अच्छा मालूम पड़ता कि भैया देखो इनने बिल्कुल सम्मान नहीं चाहा और ये बड़े भले आदमी है। तो कह रहे हैं कि उत्तम मार्दव गुण जो है सबके मन को अच्छा लगता है, और मान करण को कौन ठिकानो, अरे इसका क्या आधार है। एक जगह लिखा कि अहंकार तो बर्फ के पर्वत जैसा है उसका कोई, या कि रेत के पर्वत जैसा है उसका आधार क्या है। एक हवा चली सूर्य सब बिखर जानी है, और थोड़ी सी गर्मी पड़ी सो सारा खड़े जरूर हो लग रहा हो कि हम पहाड़ पे खड़े हैं, मनो वो बर्फ को पहाड़ है सो पिघलने में देर नहीं लगने वाली, नीचे आकर के गिरोगे। तो वो यहां कह रहे कि मान करने का क्या आधार है, कोई आधार नहीं है। क्यों, किस बात का मान करें, किस बात का अहंकार करें हम। बस्यो निगोद माहिते आया, यहाँ पर इस व्यवहार राशि में संसार में जो भी आए हैं वे निगोद की यात्रा करके आए हैं, वहां पर हमारी क्या कहना चाहिए स्थिति थी, विचार तो करो किस बात का अभिमान कर रहे। वहां तो अपन को इतने तो हर एक आदमी को अपनी अपनी अलग अलग जगह जाने हैं रहने के लिए, लेकिन वहां तो एक ही शरीर में अनंत जीव राशि को रहने की मजबूरी है, रहो इसी में रहो, आपकी अपनी ऑनरशिप नहीं चलेगी, यहां तो कॉमन ही है सब। वहां पर एक एक शरीर मिलता है कॉमन सब, उसीलिए उसको अपन बोलते कि साधारण, साधारण मतलब कॉमन, जिसको एक शरीर मिला है सबके अनंत जीवों के लिए। बताइए वहां हमारी क्या एग्जिस्टेंस रही होगी, वहां पर हमारा हम किस बात का अहंकार करें। आए तो सब लोग जो है निगोद से ही हैं, तो कह रहे वस्तु निगोद माही ते आया, अनंत काल तक निगोद में और इस तरह रह करके जहां की जीव राशि अनंत अनंत जीव राशि पड़ी हुई है उसके लिए कोई पूछने वाला नहीं है कि आप बड़े हो कि आप छोटे हो, सब वहीं से आए हुए हैं, अहंकार करने का कोई कारण नहीं है। वहां से आकर के क्या हुआ, फिर कहते निगोद माहिते आया दमरी रूकन भाग विकाया, ने? वहां से आकर के स्थावर वन इत्यादि वनस्पति कायक इत्यादि में हुआ, सो दमड़ी में बिक गया। दमड़ी चलती थी पहले, ने? चमड़ी ने जाए नहीं, दमड़ी ने जाए चमड़ी चली जाए ऐसा कहती, तो दमड़ी चलती थी वो सिक्का है वो, जैसे अपने एक नए पैसे का सिक्का पांच पैसे का सिक्का वैसी दमड़ी चलती थी। सो जिस जी जी वनस्पति इत्यादि है सो वनस्पति कितनी दमड़ी में मिल जाती। अब बात अलग है कि अगर आपको धनिया पत्ती भी चाहे तो एक रुपया देने पर है? पहले तो रूगन में मिल जाता, ऐसे ही दे दो भैया जो हमने तुम्हारे देश इतनी सब्जी ली है तो इतनी तो फोकट में ही मिल जाएगी। तो कह रहे हैं कि दमड़ी अर्थात सबसे छोटा जो माप है पैसे का, उसमें बिक गया। वनस्पति कैसे बिक जाती है? पैसों बिक जाती, जबकि जीव है वो। देखो विचार करने की चीज, वनस्पति जीव है और वो जीव कैसे बिक गया? एक दमड़ी में बिक गया। कितनी सी उसकी कीमत है, लेकिन आज हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, जबकि हमारी स्थिति ऐसी रही है। और फिर कहते कभी जो है रूंगन बिकाया, दमड़ी और फिर रूंगन, रूंगन भाग, अर्थात कभी कभी तो जो है बिना मूल्य के ही चार चीजें खरीदने पर जैसे कोई चीज ऐसे ही फ्री में डाल दी जाती है, ऐसे ही वनस्पति भी जो है चार चीजें खरीदने पर जैसे दे दी जाती है, वैसे ही मुझे रूंगन रूंगन कहलाता। अब आपके यहां पर क्या पता क्या कहते उसको, हैं? रूंगन कहते वो, जैसे एक लीटर दूध लाओ तो एक लीटर भैया थोड़ा और रूंगन डाल दो थोड़ा, तो उतना और डाल देती उसे, हैं? इसी तरह सब्जी, कोई भी सामान दिया सब्जी के बारे में विशेष रूप से है सब्जी में, और वो उतना और, तो कहते कि वो बिना कीमत के बिक गए। या तो बिके तो थोड़े से कीमत में बिके, या फिर को फ्री में। इस तरह हमारी स्थिति रही है। फिर क्या होता, कहती रूगन बिगाया बिकाया भाग वस्ते, ऐसे रूगन अर्थात बिना मूल्य के बिकने के बाद कभी भाग्यवश, वैसे तो अधिकांश जीवन ऐसे ही निकल गया, फिर भाग्य वस्ते देव हुआ। अब जो है जब धीरे धीरे इंप्रूव होकर के और कहां तक पहुंच गया, देव पर्याय प्राप्त कर ली। अब उस देव पर्याय को प्राप्त करने के बाद भी, और देवों के जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं, जब उनका मरण होने लगता है, 6 महीने पहले माला मुरझाती, अवधि ज्ञान से जानते कि कहां जाना, तो जब विचार करते हैं वो कि मुझे तो मां के पेट में जाना पड़ेगा, इतने गंदे स्थान पर मैं तो नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, तो अत्यंत संक्लेश करके और एक इंद्री की आयु का बंध करके वृक्ष में उत्पन्न हो जाता, यह लिखा उसको। हाँ, हो सकता था संगी पंचेंद्री, लेकिन मैं उधर जाऊंगा इतने गंदगी में वहां उत्पन्न होऊंगा नहीं, और ऐसा विचार करके और एक इंद्री पर्याय को धारण करके उसमें उत्पन्न, तो वही कह रहे हैं कि क्या लिखा, देव एक इंद्री भया। पहले तो बहुत भाग्य से उतनी ऊंची पर्याय प्राप्त कर ली, देव पर्याय, कहां निगो से निकले, एक इंद्री में भ्रमण किया और फिर देव बन गए, और देव से भी और अपने परिणाम खोटे करके, और कहां आकर के उत्पन्न हो गया, एक इंद्री में उत्पन्न। मिथ्या दृष्टि की चर्चा है, सम्यक दृष्टि देव हो गए तो प्रसन्न होता है कि मनुष्य पर्याय मिलने वाली है, अब मैं तपस्या करके अपना कल्याण कर लूंगा। इसलिए ये चीज मुझे भी ये मालूम नहीं था, बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी, मैंने अभी पिछले साल पढ़ा इस चीज को कि बात क्या है, क्यों एक इंद्री में उत्पन्न, इतनी बड़ी ऊंचाई, देव बनकर के एक इंद्री में आना पसंद कर रहा वो। उसका कारण मिथ्या दृष्टि है, वो उसमें ज्यादा सुख मानता है, इस पर्याय में सुख नहीं मानता, तो संक्लेश कर लेता कि अरे वहां जाना पड़ेगा, उस संक्लेश के वश होकर के, और 6 महीने जो शेष रहे उसमें आयु बंधती है, उसी समय आयु का बंध होता है और एक इंद्री में आकर के उत्पन्न होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, पहले दूसरे स्वर्ग के देव ही एक इंद्री में आ सकते हैं, उसे ऊंचे वाले देव ने आए हैं, ये तो संगी पंचेंद्री ही बनेंगे, ये भी सिद्धांत से क्लियर कर ले। कहते देव फिर एक इंद्री भया, उत्तम हुआ चांडाल हुआ, फिर कभी जो है उत्तम पर्याय को प्राप्त करके और उसके बाद चांडाल पने को भी प्राप्त हुआ है। ऐसा निकृष्ट काम करना पड़ा जिसमें कि दूसरे जीवों का चांडाल कौन कहलाता, जो दूसरे जीवों का घात करता, ये जितने भी स्लॉटर हाउस में स्लॉट करते हैं वो सब जो है चांडाल, जो चमड़े इत्यादि खाल निकाल करके उसको बेचते हैं या मांस का धंधा करते हैं, वो सब कहलाएंगे। बुरा मानने की इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, क्योंकि अच्छा शब्द नहीं है उसका, लेकिन अगर वैसा काम करते हैं तो फिर वही, जैसे अपन को कोई कसाई कह देंगे तो बुरा ही नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अपन कसाई तो करते हैं, बताओ कसाई करे तो कसाई माना जाएगा, लेकिन अपन कसाई किसको कहते, जो बहुत ज्यादा कसाई करे, इतनी कसाई कि दूसरे जीवों को मार रहा है, तो उसको कहते अपन कसाई। यहां भी वैसा ही अर्थ है इसका कि जो निकृष्ट कार्य करने लगे ऐसी उस चांडाल पर्याय कहां तो उत्तम देव पर्याय को प्राप्त हुआ और वहां से जो है कभी चांडाल में आकर के भूप कीड़ों में गया और फिर राजा होकर के भी और कभी जाकर के कीड़ों में उत्पन्न हो गया। अब इसका जो है कैसे अर्थ लगाएं इसका कि भूप कीड़ों में हुआ, ऐसी बहुत सारी घटनाएं आती हैं कि जिसमें पहले तो जो है बहुत बड़ा राजा था और फिर वहां पर मरण करके वहां से कीड़े में। सेठ का उदाहरण तो मैंने पढ़ा है कि सेठ जी थे तो सेठ जी को बड़ी लोलुपता थी अपने धन पैसा की, तो फिर उनके बेटे ने मामुनी महाराज से पूछा कि महाराज जी इतनी ज्यादा इनकी लोलुपता है, कहने लगे अब तो इनकी आयु बंद गई है लेकिन अगर तुम इनका उद्धार करना चाहो तो इतना ही करना कि तुम देखना कि इनके मरण के बाद में और विष्ठा में मल मूत्र इत्यादि में तुम्हें एक कीड़ा दिखे सुबेरे, तो समझना यही है मर करके कीड़ा हुआ तुम्हारे पिता हैं, तो उसको तुम लाठी से मार देना ताकि उस पर्याय से मुक्त हो जाएगा। तो जा करके बहुत कोशिश करता है उसको मारने की लेकिन वो कीड़ा उसी में घुस जाता अपनी जान बचाने के लिए, तब उसी से निकला कि विष्टा का कीड़ा विष्टा में राजी, जिस चीज से अपन घृणा करते कल तक घृणा कर रहा था उसी में उत्पन्न हो गया तो अब उसी में राजी है। और फिर इस बात को देख करके विरक्त हो जाता उसका बेटा और वो दीक्षा दे लेता है। ऐसी घटनाएं अपने यहां इसलिए ये लिखा उन्होंने आचार्य भगवंतों की भूख हो करके भी कीड़ों में गया, इतनी बड़ी पर्याय माने राजा होने का क्या अहंकार करना, अगर थोड़े ही चूके तो कीड़ों में उत्पन्न हो जाए। ये कहना ये चाह रहे हैं कि हमें जो पर्याय मिली है उसका हम अहंकार न करें बल्कि उसका सदुपयोग करें। फिर कहते जो जीतव्य जोवन धन, ये तीनों चीजें, जीतव्य मतलब हमारा जीवन और जोवन यानी हमारी युवा अवस्था और धन, इन सब का भी क्या अहंकार करना, ने तो इस पर्याय का अहंकार करना ने अपने जीवन का अहंकार करना ने अपने युवा पने का अहंकार करना ने धन का, क्यों कहा करें जल बुदबुदा, जल में उठने वाले बुलबुले हैं, थोड़ी देर रहते हैं दिखते सुंदर हैं लेकिन फिर फूट जाते हैं नष्ट हो जाते हैं। ये चीजें भी ऐसी ही हैं, आज हमारा जन्म हुआ है तो एक दिन जो है मरण भी होगा, आज यौवन है तो कल के दिन बुढ़ापा भी आएगा, आज धन पैसा है तो कल के दिन दरिद्रता भी आ सकती है, किस बात का अभिमान करें, क्योंकि ये चीजें बहुत क्षणिक है नाशवान है। ऐसा विचार करके अहंकार न करना चाहिए। सलाह ये करी विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदा, ज्ञान का पावे उदा अर्थात ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान का उदय हो जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कैसे ज्ञान प्राप्त होता है देखो तो झुकने से बड़े होते हैं। उच्चै गोत्रम प्रणते, आचार्य संबंधपत्र स्वामी कह रहे हैं कि उच्चैर गोत्रम प्रणते, जो जितना झुकता है वो उतने ऊंचे स्टेटस को उतनी ऊंचाई को प्राप्त, गोत्र का मतलब स्टेटस, उच्च गोत्र की प्राप्ति होती विनय से। और अपन को लगता कि अकड़ने से बड़े हो जाएंगे, वो कह रहे कि झुकने से बड़े हो। करी विनय बहुगुण और बड़े जन की, बहुत गुण वाले कौन हैं, बहुत गुण वाले तो पंच परमेश्वर जी हैं, क्योंकि अपने यहां तो गुण रत्न त्रय को माना है। तो एक अर्थ तो हो गया कि जो बहुत गुण वाले अर्थात रत्न त्रय को धारण करने वाले उनकी तो विनय करना ही करना, लेकिन बड़े जन की, बड़े जन मतलब हमारे माता पिता हमारे बड़े भाई बहन ये सब बड़े जन कहलाएंगे, और गुण बहुगुण वाले कौन कहलाएंगे, पंच परमेश्वर जी सब बहुत गुण वाले, क्योंकि रत्न त्रय गुण है पंच परमेश्वर जी के, इसलिए वे बहुत गुण वाले, उनकी विनय भी करना यानी रत्नत्रय की विनय करना, रत्नत्रय को धारण करने वाले की विनय करना, ये चार तीन प्रकार की विनय हो गई, दर्शन की ज्ञान की चारित्र की तब की विनय करना चाहिए चार, और पांच में नंबर की विनय लिखी उपचार विनय। सो सब बातें इतने में आ गई, करी विनय बहुगुण और फिर बड़े जन की, बड़े जन की अपने से जो बड़े हैं उम्र में बड़े हैं, कोई ज्ञान में बड़े होते हैं, अपन कहते ना ज्ञान व्रत वयोव्रत और भी चारित्र व्रत, तपस्या में वृद्ध हैं अर्थात तपस्या में बड़े हैं, इसमें सब आ जाएगा। अपन से उम्र में बड़े हैं उनकी विनय भी करना चाहिए ज्ञान का, तभी जो है अपने जीवन में और ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा जो कि हमारे जीवन में कल्याण का कारण बनेगा। कहते भी हैं अपन के ज्ञान का फल तो विनय है, जो व्यक्ति ज्ञानवान है उसको विनयवान भी होगा ही होगा, और अज्ञानी होगा तो ही अकड़ेगा। तो बताओ अगर अपन जिस समय अहंकार करें तो अपन कौन कहलाएंगे, अज्ञानी कहलाएंगे कि ज्ञानी कहलाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं। उस समय जिस समय अपने भीतर अहंकार आ जावे तो अपन अज्ञानी हो गए, ऐसा विचार कर ले। देख ही रहे ना, कुछ प्रश्न है अधिक से अधिक धन कमाने की लालसा रखना सिर्फ इस उद्देश्य से कि हम अधिक से अधिक दान कर सकें उचित है या कि नहीं है? अपने हाथों गुणभद्राचार्य महाराज ने लिखा है आत्मानुशासन में कि जब भी नदियों में पानी बारिश में ज्यादा आता है तो गंद ही आता है। क्या तो एक चीज तो ये हो गई कि जितना ज्यादा आएगा तो साफ तो नहीं होगा, वो तो गंदा ही हो। अब दूसरी चीज, मुश्किल से पाप करके कमाना पड़ेगा जब ज्यादा मात्रा में आए। और फिर एक और उसमें आगे लिखते हैं कि क्यों भाई आप ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान मानोगे जो ये कहता है कि मेरे पास पानी मैंने इसलिए बहुत सागर नहीं, मैं इसलिए कीचड़ बहुत लगा रहा हूं अपने ऊपर ताकि मैं पानी से साफ करूं। पहले कीचड़ शरीर पर लगा करके बाद में पानी से स्नान करने से बेहतर है कि कीचड़ में न जाओ, साफ सुथरे बने रहो। ये उदाहरण दिया उन्होंने। तो पहले तो मैं पाप करके खूब संपदा कमाऊं फिर बाद में पुण्य में लगाऊं। सुपे ने तो कीचड़ लगा लिया, बाद में पानी से धोने का इंतजाम कर रहे, ये क्या कहलाएगा? बुद्धिमानी कहलाएगी क्या? नहीं कहलाएगी। इसलिए अधिक से अधिक धन कमाने की एक स्टेटमेंट सुना था हमने, उसको सुन करके बहुत दुख हुआ था। हमें 4-5 साल पहले की बात है, ये हैदराबाद में बहुत बड़ा स्टार्टर हाउस खुला था, भारी विरोध हुआ। श्वेतांबर दिगंबर भाई सब ने मिलकर वहां पर, श्वेतांबर भाइयों की संख्या वहां ज्यादा है, और मजा ये था कि उसका जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर था स्टार्टर हाउस का, वो है हिम्मत सिंह कोठारी, श्वेतांबर जैन। बुरा नहीं मानो, स्पष्ट सब में खूब आया पेपरों में भारी। और उनसे जब ये पूछा गया कि आप इतने समझदार होकर के, आप सब कुछ होकर के, धर्मात्मा होकर के, और आपने इसमें अपने इतने सारे शेयर्स क्यों ले रखे, आप इससे क्या करेंगे? तो कहते कि इस तरह में धन कमा करके उपाश्रय चलाऊंगा, मुनिजनों की सेवा करूंगा, साधु साधियों के लिए ग्रंथ छपवाऊंगा, और ये इसलिए मैंने ये शेयर्स ले रखे, इसमें प्रॉफिट बहुत है। अब बताइए, अब ऐसे व्यक्ति को आप अच्छा कहोगे? कोई व्यक्ति डाका डाले और फिर बाद में दानी बने, भैया अच्छो कहा है कि डाकू कहा है कि दानी कहा है? एक विचार करने की चीज है अपन स्वयं। इसलिए सज्जनता तो इसमें है कि हम अपनी आवश्यकता भर ही कमाएं, और अगर आवश्यकता भर कमाने से भी ईमानदारी से कमाते कमाते भी ज्यादा हो जावे तो हम उसमें से देवे, तो दान भी होगा। परिग्रह का परिमाण करने वाला जो दान देता है वही दान श्रेष्ठ है, और जो अनाप शनाप परिग्रह करके फिर उसमें से थोड़ा सा दे देता है वो तो परिग्रही है, उसका दान श्रेष्ठ दान नहीं माना जाएगा, सात्विक दान नहीं है, वो राजसिक दान कहलाएगा। अहंकार वश दिया या संक्लेश वश पहले उतनी संपत्ति, बड़ा संक्लेश रहता है कि मैं तो अब दिखा दूंगा, अगले बार तो बोली मैं ही लूंगा, जी जान लगा दूंगा, अगले साल तक इतना कमाऊंगा, उनने ली थी बोली, देखता हूं अगले बार मैं भी ऐसा कमा करके बोली लूंगा। इतने संक्लेश पूर्वक जो है, और हम दान देने के लिए, बताइए दान तो देना है 1 मिनट में, और साल भर तक उसके देने के लिए पाप करते रहे उससे कितना कर्म का बंध हुआ, तो ये प्रक्रिया। लेकिन आज जय चल पड़ी, आज प्रचार इसी का है, जय जयकार इसी की है, मंच पर सम्मान उसी का है भैया, इसलिए चुपचाप उसी गेल चलती रहो, हमारी बिल्कुल नहीं मानना। इसमें क्या धरा, इसमें क्या रखा हुआ जी? तो हमने कहीं बातें कहने सुनने की हैं जी, अच्छी लगती हैं, लेकिन जमाना जिस तरह का है उसी तरह से अपना काम तो वैसे ही, उसके बिना कैसे सटेगा काम, उसके पैसे के बिना होते ही नहीं, जो भी काम करवाना है सब पैसे से ही काम होते हैं, बड़े बड़े आदमी को पकड़ना पड़ते हैं। लेकिन ध्यान रखना, एक दिन आपको, मैं बहुत अहंकार वश नहीं कह रहा, एक दिन ये भी दिखा दूंगा करके, मेरे मन में तो यही है कि बिना उसके भी हम और एक एक आदमी आसानी से और इस चीज को हैंडल कर सकता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम कोई भी काम करें तो हमें एक बड़े पैसे वाले को ही चाहिए पड़ेगा, छोटा छोटा सा काम करने वाले लोग भी थोड़ा थोड़ा सा सहयोग करके और अपना काम धर्म का बहुत आसानी कर सकते, वो ज्यादा सफल होगा वनस्पति इसके कि एक ही व्यक्ति ने और पूरे बड़े बड़े आयोजन करके और जय जयकार करवा ली, तो ऐसा तो कोई भी कर लेगा। लेकिन जिसमें सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस तरह का जब भाग्योदय की शुरुआत हुई थी तब सब बैठे आचार्य श्री के सानिध्य में, तो सबके अपने अपने विचार, आचार्य श्री सब सुनते रहे चुपचाप। फिर मेरे से पूछा कि आप क्या सोचते हैं इतने बड़े उसकी स्थापना के लिए क्या करना चाहिए, कैसे इसके लिए लोगों को सजेस्ट करना चाहिए कि आप इसमें इस तरह से करें इस योजना को। हमने कहा कि या तो आप एक आदमी ढूंढ लो 1 करोड़ रुपया देने वाला, या फिर थोड़ी हिम्मत करो तो 1-1 रुपया देने वाले 1 करोड़ लोग ढूंढ लो। 1-1 रुपए वाले 1 करोड़ लोगों से अगर कोई काम होगा तो ज्यादा कीमती होगा, और एक व्यक्ति जिसने 1 करोड़ दिया है ने उसका लाभ होगा, उन्हें उस संस्था का लाभ, क्योंकि निरंतर अहंकार से ग्रसित रहेगा कि मेरे दम पर बना हुआ पूरा, और जिसमें हर आदमी सोच रहा कि नहीं नहीं मेरा एक पैसा भी इसमें लगा हुआ है, इसलिए ये मेरा है, इस तरह की भावना तो हमारे काम हो सकते हैं। ऐसा नहीं समझना जो बात आती ना कि बिना पैसे के नहीं होगा, लेकिन अनाप शनाप कमाई के पैसे से होगा तो जो आज वर्तमान में है वैसी ही प्रक्रिया चलती रहेगी, और कभी इसको चेंज करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, ऐसा भी चेंज कर सकते हैं। उद्देश्य आपका भले ही बहुत अधिक दान देने का है, लेकिन अप्रोच प्रॉपर नहीं है, ढंग प्रॉपर नहीं है आपका। बहुत अधिक दान देना है तो अपने भोग और सुख सुविधा की सामग्री कम कर दो फिर दे दो। हाँ, आपको अगर एक एक प्रक्रिया चली थी उस समय कि 1 ग्रास कम खाएंगे, 1 ग्रास 15 पैसे का पड़ता है, तो 15 पैसे जो है डोनेट करना है, एक दिन में 10 पैसे का 1 सिक्का डोनेट करना है, 1 ग्रास रोज कम खाएंगे, 1 साल तक जो है 10 पैसे दान करना है, इसलिए 1 ग्रास रोज कम खाएंगे, उसका 1-10 पैसा बचाएंगे, तब इस तरह का जो दान है वो सबसे श्रेष्ठ दान माना है। तो ये प्रक्रिया तो मन में उठने वाले बुरे विचारों को कैसे परिष्कृत किया जाए, सबसे पहले तो उनसे लड़ा नहीं जाए। अपन लोग सबसे पहले ये करते हैं कि जैसे ही कोई बुरा विचार आया और उससे लड़ने लगते हैं, अरे ये हटाओ उसको, ये कहां से आ गया, और अरे अब जब खुद ही तो करो तो पहले से वो डरो है भीतर, अब आ ही वो तो। अभी वर्तमान में जरूर आपको सावधानी हो गई, लेकिन असावधानी बस तो खोटे बहुत सारे कर्म कर लिए हैं संचित, वो जब अपना फल देंगे तो विचारों में खोटापन तो आएगा ही, इसलिए लड़ना नहीं। अंधेरे से लड़ करके अंधेरे को नहीं हटाया जा सकता, उपाय इतना है कि रोशनी कर दी जाए तो अंधेरा पता भी नहीं लगेगा कहां चला गया। तो दूसरी चीज कि जैसे ही बुरे विचार आए मैं उन विचारों को सिर्फ साक्षी भाव से देखूं कि देखो मेरे अंदर कैसे खोटे खोटे विचार पड़े हुए हैं, मैंने ही कभी इन सबको संचित किया होगा, लेकिन इनको क्रियान्वित नहीं करूंगा मैं। हाँ, आने दो मेरे भीतर विचार, रात्रि भोजन का त्याग करने के बाद मेरे मन में रात में खाने का और पता नहीं कैसी कैसी चीजें जो मैं छोड़ चुका हूं उन सबके खाने का विचार आ गया, आने दो, लेकिन मैं खाऊंगा नहीं। मैं उस विचार को क्रियान्वित नहीं होने दूंगा। अब अब मेरे मन में तो लगा हुआ है कि खा लेते तो उस समय अपने को दूसरे किसी काम में लगा लेना ताकि वो बात भूल जावे। तीसरा उपाय है, मन में खोटे विचार आते हैं कर्म के उदय से आते हैं ऐसा जानना, उनसे लड़ना नहीं, उनको हटाने का प्रयत्न पुरुषार्थ व्यर्थ पुरुषार्थ नहीं करना, वे अपने आप हट जाएंगे अगर हम कुछ अच्छा करने में लग जाएंगे और हम उन बुरे विचारों को क्रियान्वित नहीं करेंगे तो हम बुरे विचारों पर आसानी से और विजय प्राप्त कर सकते। भैया यदि पुरुषार्थ बिल्कुल ना किया जाए और सिर्फ भावनाओं को उत्कृष्ट बनाए रखें तो हमारा कल्याण हुआ कि नहीं? अब ये भावनाओं को उत्कृष्ट बनाने तो पुरुषार्थ, और आप कह रहे कि पुरुषार्थ बिल्कुल, पुरुषार्थ का अर्थ जो थोड़ी है कि उठा पटक करना, पुरुषार्थ का अर्थ ये कि दौड़ धूप कर दी तो बहुत पुरुषार्थ, एक कोने में बैठे बैठे धर्म ध्यान करना भी धर्म पुरुषार्थ है, माला फेर रहे चुपचाप कोई से राग द्वेष नहीं कर रहे अपने माला फेर रहे कहते ये बड़ी कर्मठता है, ये बड़ा पुरुषार्थ है, और वो जो दौड़ धूप में लगा है उठा पटक में लगा हुआ है कहते वो पुरुषार्थी नहीं है। पुरुषार्थी सच्चा तो वही है जो कि अपने आत्म कल्याण में लगा हुआ है। तो आप अपनी भावनाओं को अच्छा बना रहे इसका मतलब आत्म कल्याण का पुरुषार्थ कर रहे, तो ऐसा पुरुषार्थ तो कल्याणकारी है ही भैया। उदाहरण, हम मुनि बनने की भावना हमेशा बनाए परंतु उस दिशा में कोई प्रयास ना करें तो काम बन जाएगा, ये जीवन में नहीं बन तो अगले में बन जे, मगर भावना खाली नहीं जाएगी, भावना भावनाशिनी ऐसा लिखा हुआ है। हमें अगर भावना है मुनि बनने की और वर्तमान में हम कोई अपने कर्म के उदय से पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे, वीर्यांतराय कर्म का इतना तीव्र उदय है कि भावना होते हुए भी दान देने की दान नहीं दे पाता, धर्म ध्यान करने की मुनि बनने की भावना होते हुए भी मुनि बनने का साहस नहीं हो पाता, कर्म के तीव्र उदय में परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, कर्म का तीव्र उदय है, पुरुषार्थ चलता नहीं है लेकिन भावना बनने की है, तो कहते ऐसा व्यक्ति आगे इन्हीं भावनाओं के द्वारा और अपने कर्मों को काट करके अपना कल्याण करेगा, ये आचार्यों का कथन है। छठखंड आगम में धवला जी में लिखा हुआ है कि जिसने वर्तमान में ज्ञान का अभ्यास किया है भले ही ज्ञान कम होने से विस्मृत हो जावे लेकिन आगामी जीवन में यह अभ्यास केवल ज्ञान का कारण होता। ग्वाला था, बताओ, कोंडेश नाम के मुनि महाराज बने थे और ग्वाला था, ग्वाला एक मुनि महाराज बैठे हैं उनको देख करके और उसको भाव आया कि जी ग्रंथ रखा है महाराज इतने कौन से छोड़ गए थे जो इनको दे देवे, सो वो ग्रंथ भेंट कर दिया था कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, सो महाराज ने और कुछ नहीं बोला ग्रंथ लेकर के और आकाश मार्ग से जाते समय नमो अरहंताणम ऐसा कह के चले गए। उसने कहा कि यही मंत्र मुझे देखे गए हैं, मैं तो अज्ञानी हूं है? सो जब उसका मरण होने लगा तो कहता नमो अरहंताणम, उतने मात्र से और फिर से मनुष्य बना और मनुष्य बन करके और मुनि दीक्षा ले करके और जैसे मुनि दीक्षा ली तो ज्ञान का ऐसा श्रेयोपसम हुआ कि प्रसिद्ध हो गए ज्ञान में कोंडेश नाम के मुनि महाराज है, ये आता उनके बारे में। तो वो पूर्व जीवन का उतना सा ज्ञान दान कजू पढ़े लिखे ने अकेले शास्त्र दौ दूसरे के लाने, ऐसे ही हमने कुछ नहीं किया अकेले मुनि बनने की भावना करी, मुनि जन मुनि जीवन बहुत अच्छा है ऐसा हमने माना और हमेशा सेवा भाव करते रहे, बने बिल्कुल नहीं मुनि, मुनि जनों की सेवा करते रहे मुनि बनने की भावना भाते रहे, भैया वो भी आगामी जीवन में कल्याण में कारण बनेगी। इसलिए आपने हमारी बात को बहुत सोच के, महाराज बार बार कहते हैं कि मुनि बनने की भावना तो भाव कम से कम, तब जा और पूछ लो कि ये से अकेले कहो में बनो चाहिए है ना, ऐसा पूछ लिया आपने ठीक। जब क्रोध आ जाए तो उस वक्त ऐसा क्या किया जाए जिससे वो पुनः शांत हो जाए, वो क्रोध ना रह जाए। सबसे पहले तो आप जब गुस्सा नहीं आ रहा तब एक काम करो, छोटी छोटी शक्कर की गोली खरीद के धर लो, काम आती है भी उस समय। तो जिस समय क्रोध आवे तो फौरन जा करके और बिल्कुल अलमारी में रखना, उनको ताला लगा के नहीं तो हमेशा खाते खाते खराब खत्म हो जाएंगी। तो जब बहुत गुस्सा आ रहा हो तब जल्दी चाबी खोल के उसको मुंह में, और देखो सावधानी रखना पड़ेगी, चूसना गुटकना नहीं उसको, चूसते हैं। पहला सबसे आसान उपाय ये गुस्से को जीतने का। अब लेकिन आप कहोगे कि कोई त्यागी व्रती है और वो बेर बेर नहीं खा सकता उसमें, तो फिर उसके लिए दूसरा उपाय है कि वो मौन ले ले वे। जब तक मुझे क्रोध की अवस्था है, मेरा मौन क्रोध से बोलने के लिए, घृणा से बोलने के लिए, मेरा मौन प्रेम से बोलने के लिए हाँ, घृणा से बोलने के लिए ना, ये नियम संकल्प कर लें पहले ही। जब क्रोध नहीं आया तब संकल्प कर लें कि क्रोध के वशीभूत होकर के बोलूंगा नहीं, नहीं बोलने से कम बात तो नहीं बिगड़ेगी। अब रह गया मेरे भीतर ज्यों का त्यों, माने विष था, हम चाहते तो दूसरे पे उगल देते, तो उससे क्या होता, दूसरे का भी घात होता और अपना तो होता ही, क्योंकि और बढ़ता वो। तो हमने क्या किया, दूसरे पे नहीं डाला अपना गुस्सा, अब हम अपने भीतर ही भीतर पी गए उसको, अब भीतर भीतर अपने को तकलीफ देगा वो। अब उसको शांत करने के लिए अपने आप को, ये डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है क्रोध, उसको किसी कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगा दो, कुछ काम में अपने आप को लगा दो, ताकि वो क्रोध का संस्कार ढीला पड़ जाए। अब लेकिन ये संस्कार ढीला पड़ने पर भी 6-6 महीने और अनंत काल तक रह सकता, अनंतानुबंधी क्रोध होवे तो अनंत काल तक रह सकता है ये क्रोध। तो उसको जितनी जल्दी हो सके क्षमा भाव धारण करके नष्ट कर देना, पहले तो शांत कर लेना, ताकि शांत होने पर कुछ बात सूझेगी, नहीं तो नहीं सूझती। उस समय क्रोध में तो यही सूझता कि 4 बातें कड़ी और कही है, लेकिन उस समय अपने को बहुत जप्त करके और रख करके थोड़े शांत होने पर, कषाय का उद्रेक है, उस उद्रेक को शांत होने के बाद फिर विचार करके, और जो भी कार्य है उसको आसानी से किया जा सकता है। साइकोलॉजी में तो लिखा हुआ है कि अगर ये डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव में कन्वर्ट करना हो तो आपको गुस्सा आ रहा है, और अगर आप चश्मा लगाते हैं तो झटके से चश्मा उतार करके रूमाल से उसको पोंछें और फिर से लगाएं। एक चीज, आप ऐसे बैठे हैं सामने टेबल वेबल पर, सामान वामान पड़ा है, तो सारा सामान डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, सारा सामान एक तरफ पटक दें और इसको उठा करके झटकारें, फिर से बिछाएं, फिर सारा सामान ठीक से जमाएं, लग जाएं काम में। और अगर आपसे ये भी नहीं होता तो वो जो कागज वागज जो ऐसे डस्टबिन में पड़े हैं उनको उठाएं, और जैसे बच्चे लोग जहाज बनाते हैं वैसी जहाज बना करके उड़ाएं, ताकि पानी में तैरा। साइकोलॉजी में इस तरह के उपाय, मनोविज्ञान वाले लोग कहते हैं, कहने का उनका आशय यह है कि कोई ना कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क करना शुरू कर दो अपने आप को। अपन आचार्य कुंद कुंद स्वामी के चरणों में बैठे तो वो कहते कि उपयोग उपयोग में रहे, क्रोध क्रोध में रहे, तो हम आसानी से क्रोध को जीत सकते। ये अध्यात्म की बात होगी, कोहे कोहो चेव, क्रोध क्रोध में ही रह जाएगा, उपयोग उपयोग में रह जाएगा, अर्थात हम अपने आप में आत्मस्थ हो जाएंगे। लेकिन ये सहज नहीं है, हम उसको सहज बनाने के लिए अपने को किसी न किसी में अपने उपयोग को अपने मन को रमा लेवे, अपना जो अच्छा अपनी हॉबी है जो अपने लिए अच्छा लगता उस काम में अपन लग जावे शांत बैठ करके, तो जीता जा सकता उस समय। ये अपने विशेषता है जैन दर्शन की, कि जहां एक तरफ क्रोध नहीं करने का कहा है, वहीं पर क्रोध आ जाने पर उसे कैसे शांत किया जाए ये उपाय बताए। राज्यपाल मध्य प्रदेश के उस समय, नाम तो याद नहीं आ रहा, उनसे एक बार चर्चा के दौरान ऐसे बैठे थे तो बोले, वो जैन नहीं थे, तो बोले कि आपके धर्म की और सब बातें तो मुझे और धर्मों में मिलती हैं, लेकिन एक बात मुझे बहुत स्पेशल मालूम पड़ती है आपके धर्म में, वो ये कि सब धर्म कहते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, मान नहीं करना चाहिए, माया नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, लेकिन एकमात्र जैन दर्शन है जिसमें भगवान महावीर कहते हैं कि आओ क्रोध आ जाने पर क्या करना चाहिए मैं तुम्हें बता दूं। क्रोध नहीं करना चाहिए ये तो सब कह रहे हैं, लेकिन क्रोध आ जावे तो क्या करना चाहिए, मान अहंकार आ जावे तो उसे कैसे जीतना चाहिए। क्रोध को प्रीति से जीतो, मान को विनय से जीतो, और माया को सरलता से जीतो और लोभ को संतोष से जीतो, जीतने का उपाय बताना ये तो ये अपने को इस तरह कर सकते हैं। हमने के तो आसानी से दिया लेकिन जीतना बहुत कठिन, ये हम फिर क्या दे रहे हैं आपसे। बस इतना ही कर सकते हैं कि ड्यूरेशन कम कर दे, ज्यादा देर तक प्रोलॉन्ग ना करें उसको, इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, बहुत तेजी से अपना आहित और दूसरे का आहित करने वाला गुस्सा ना करें, है ना, इतना तो कर सकते, ज्यादा समय तक गुस्से में ना रहें और बहुत इंटेंसिटी ना रहे। जैसे बच्चों को आता है थोड़ी देर को आया फिर उसके बाद शांत, ऐसे ही जो है अपन इतना तो कर ही सकते हैं अपने अभ्यास के द्वारा। क्या ये आवश्यक कि सदैव परंपरा से चले आ रहे पूजा पाठ ही बोले? तो भैया अपने मन को बना लो, मैंने कहा हमने मना तो कर ही नहीं, प्रभुपद पावन की स्तुति बनानी है ऐसा तो है नहीं, अपनी एक घर बना दो, अगर कोई गुंडा छपनी तो बाम छपवा देंगे, इन लोगों से कह देंगे भी छपवा देंगे, वही रख जाएगी मंदिर में आपके नाम से हो जाएगी। कोई भी चीज जो है इतनी अपन सोचते हैं क्यों, जिसने भी शुरू किया होगा उसको हम फॉलो कर रहे हैं तो अच्छी चीज को फॉलो करने में हमें क्या तकलीफ होनी चाहिए, फिर हम क्यों ये कहें कि क्या हमें परंपराओं को ही फॉलो करना चाहिए, जो अच्छी हैं उनको फॉलो करने में क्या दिक्कत, बुरी परंपराओं को हम भले ही तोड़ दें, बुरी परंपरा है मिथ्यात्व की, अनादिकाल से चला रहा मेरे अंदर मिथ्यात्व, मैं तोड़ना चाहूं तो मिथ्यात्व की परंपरा को तोड़ू, लेकिन सम्यक दर्शन की परंपरा को क्यों तोड़ू, देव दर्शन से तो सम्यक दर्शन होता है, तो हम कहें कि जी रोज रोज मंदिर जावे की जब परंपरा पुरानी हो गई अब तोड़ो इसको दूसरी बना लो, नहीं भैया रोज मंदिर जाने की परंपरा तो अच्छी है उसको बनाए रखो, जो पूजा पाठ है उनमें भगवान के गुणगान ही तो दिखे हैं, ये बात अलग है कि आपको उसमें रुचि नहीं है, रुचि आप अपने मन का कोई बना लीजिए, वहां तो उद्देश्य है कि भगवान के गुणगान करना, अपनी आलोचना करना, प्रभुपति पावन में अपाप हो गई पूजा, अपने अपने शब्द हैं, आप पतित पावन हो और मैं अपावन हूं, अब और क्या, इसीलिए तो आपके चरणों में आया, सो अब आपकी प्रशंसा इसमें है कि आप हमारे जन्म मरण से दूर करो हमारे लाने, नकाय काय की प्रशंसा, हम आपके पास आए का प्रशंसा, यो विरद आप निहार स्वामी मैट जामन मरण जी, अपनी प्रशंसा आप जानो, आप अपनो विरद निहार, आपकी प्रशंसा, वृद्ध मतलब प्रशंसा, पहले लोग गाते थे ना वृद्धावली, भैया उनकी प्रशंसा में बहुत बड़ी बड़ी वृद्धावली गाई गई, तो वृद्ध मतलब प्रशंसा, तो कहती आपकी प्रशंसा इसमें है कि आप अपने चरणों में आने वाले को जन्म मरण से पार कर देते हो, अब हम आपके चरणों में आए हैं समाओ जन्म मरण घट जावे जब, तो आपकी प्रशंसा ना तो पूने पूछा आपको, देख लो आप ऐसा भगवान से कहती अपन जी, अपन ने अपने मन की पूजा बनाई नहीं बनाई, अब इसमें देखो कितनी अच्छी भाव है, अब अपन कहो कि जी ऐसी प्रभुपतित पावन का बोलना जरूरी है कि परंपरा से नहीं, ये तो अच्छी चीज है, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे, किसी ने अपनी भावनाएं व्यक्त करी अपन को लगता यही तो हमारी भावना थी तो अपन ने उसको फॉलो कर लिया।